कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन सारी यमुना तीर वन सारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundara Ke. Jai Gaurani Pai, Gaurani Pai, Gaurani Pai, Jai Gaurani Pai. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada.
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, इस विषय पर आज के दूसरे दिवस की चर्चा आरंभ हो रही है। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के पश्चात जब वो वृंदावन की ओर आए तो पहले रामकेली में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कृपा बरसाया उनके ऊपर। फिर जगन्नाथपुरी लौट के चले गए। दूसरी बार जब वो वृंदावन की ओर जा रहे थे उस समय रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई श्री वल्लभ प्रयाग आए और प्रयाग में फिर से उन दोनों भाइयों ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग क्षेत्र में दशाश्वमेध घाट में 10 दिन लगातार श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिए और उनके उपदेश की शुरुआत सबसे प्राथमिक ज्ञान से आरंभ हुई। हम कल सुन रहे थे कि महाप्रभु वर्णन कर रहे थे कि सारे ब्रह्मांड में ये 84 लाख योनियां फैली हुई हैं और जीव एक शरीर से दूसरे शरीर, एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते रहता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार। जो मनुष्य जीवन में कर्म करते हैं उसके अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिलते हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने जीव आत्मा के माप का वर्णन किया। कितना है आत्मा का माप? 1 बाल का 10,000वां हिस्सा, 1 बाल के अग्रभाग का केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। तो केश के अग्र भाग को 100 भाग किए जाएं और उस एक टुकड़े को फिर से 100 भाग किए जाएं तो ये जो टुकड़ा रहेगा ये आत्मा का माप है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने आत्मा का वर्णन किया। महाप्रभु के उपदेश में, शिक्षाओं में पहला विषय ये है कि जीव आत्मा जो बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में, उनका स्थान क्या है। और इस विषय के भीतर ये पहले 2 विषय थे। अब तीसरा विषय जिसके बारे में महाप्रभु वर्णन करने जाएंगे, अब हम देखेंगे, वो बतला रहे हैं कि तरह तरह के यहाँ पर जीव होते हैं, बद्ध जीव हैं, उनके विभाजन महाप्रभु ने इस तरह से किए थे। वो चार्ट है ना, चार्ट। Yes. भौतिक जगत में जीवात्माओं के प्रकार बड़े सुंदर ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों का वर्णन या विश्लेषण किया है। महाप्रभु कहने लगे श्रील रूप गोस्वामी से कि जितने भी सारे 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग तरह के प्राणी हैं, ये दो प्रकार के हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जो अचर हैं, जो ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, जैसे पेड़ हैं इत्यादि। और जंगम, जंगम मतलब चलने फिरने वाले जो प्राणी होते हैं, चर, चर प्राणी। तो इन चर प्राणियों में से भी तीन प्रकार के हैं। एक स्थलचर, स्थलचर मतलब जो भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर चलते हैं। दूसरे हैं जलचर, जैसे मछलियां वगैरह जो जल के भीतर तैरती हैं। और तीसरे खेचर, खेचर मतलब आकाश में घूमने वाले, जैसे पक्षी वगैरह। तो ये सब जंगम चर प्राणी हैं, स्थलचर, जलचर, खेचर। और स्थलचर, इनमें भी दो भाग हैं। आपको स्मरण होगा कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों का विभाजन, इसके बारे में कल संक्षिप्त रूप में चर्चा हुई थी। तरह तरह के योनियों के की संख्या का वर्णन भी शास्त्रों में है। जैसे स्थावर हैं जो पेड़ पौधे, स्थावरा लक्ष विंशति पद्म पुराण में कहा है, 20 लाख योनियां हैं स्थावर योनियों के। केवल योनि, प्राणियों की संख्या नहीं है, ये योनियों की संख्या है, स्पीशीज। और फिर इसमें स्थलचर, जलचर और खेचर। जलचर मतलब जलजा नवलक्षाणी 9 लाख योनियां, और खेचर पक्षिणाम दशलक्षणम 10 लाख योनियां खेचर हैं। तो बाकी के जितने भी हैं ये सब स्थलचर हैं। और इन स्थलचर प्राणियों में से कितने हुए गणना कीजिए, था स्थावर के 20 हो गए, जलचर के 9 और खेचर के 10, तो 39 बराबर है। और इसमें से 4 लाख मनुष्य योनि रहे स्थलचर में से, तो बाकी अन्य अन्य पशु, कीड़े पशु इत्यादि जितने भी हैं। तो मनुष्य में भी दो विभाजन है, इनको अनार्य और आर्य कहते हैं। आर्य कौन है, जो वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं उनको आर्य कहते हैं, जो वैदिक सभ्यता का पालन नहीं करते उनको अनार्य कहते हैं। तो सबसे पहले अनार्य, तो अनार्य वो व्यक्ति हैं जैसे म्लेच्छ, यवन, चांडाल, पुलिंद, बौद्ध, ऐसे इन अलग अलग तरह के लोगों का वर्णन महाप्रभु ने किया, इनका उल्लेख किया महाप्रभु ने। और इनकी विशेषता ये है कि इनके अंदर कोई शुचि नहीं है, स्वच्छता बिल्कुल नहीं है, ना अंदर की स्वच्छता और ना बाहर की स्वच्छता। साथ साथ इनको आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, ये लोग भगवान में भी विश्वास नहीं करते हैं। और इस प्रकार से ये लोग पशु तुल्य हैं, ये है अनार्य। फिर हैं आर्य, इज नॉट देयर, कैन यू ओपन मध्य लीला 19 चैप्टर। Verses are not here. Shloka is here. Bengali. Okay. फिर जो आर्य हैं, जो वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं, जो विधि विधानों का को मानते हैं कम से कम, उनमें भी दो श्रेणियां हैं। एक है धर्माचारी और दूसरे है अधर्माचारी। धर्माचार्य मतलब जो नियमों का, विधि विधानों का पालन करते हैं, और जो आर्य होते हुए भी विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं उनको अधर्माचार्य कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आर्य कहलाते हैं ये अधर्माचार्य भला कैसे हो सकते हैं, फिर उनको आर्य क्यों कहते हैं हम? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये केवल नाम के लिए आर्य है, केवल बाहरी दृष्टि से अपने आप को ऐसे पेश करते हैं कि वो बहुत धर्म को मानते हैं इत्यादि, परंतु वास्तव में उनको नियम पालन में विधि विधानों के पालन में कोई रुचि नहीं है, नहीं करते हैं, बल्कि कभी कभी धर्म के नाम पर पाप भी करते हैं। तो 50% से ज़्यादा लोग जो आर्य श्रेणी में हैं वो अधर्माचारी हैं। हम देखते हैं कई लोगों का अनुभव हमें, आपने भी देखा होगा, कहते हैं जी हम तो बहुत धार्मिक हैं लेकिन तरह तरह के पाप करते हैं, कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, कहने के लिए थोड़े बहुत धार्मिक हैं, तो ये अधर्माचार्य। फिर धर्माचार्य वो लोग हैं जो ऐसे विधि विधानों का पालन करते हैं, मानते हैं वेद हैं, भगवान हैं, और ऐसे लोगों में से प्राय लॉक कर देते हैं। तो ऐसे धर्माचारी लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कर्मनिष्ठ हैं। कर्मनिष्ठ मतलब क्या? जिनको कर्म में निष्ठा है, श्रद्धा है, वो सोचते हैं कर्म ही सब कुछ है। और कर्म क्यों करते हैं? किसी लाभ के लिए, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो कर्मनिष्ठ लोग, इसलिए दिन रात मेहनत करते हैं, धार्मिक क्रियाओं का विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? मोक्ष के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए? नहीं। ऐसे कर्मनिष्ठ लोगों के दो प्रकार हैं, एक है सकाम कर्मी और दूसरे हैं निष्काम कर्मी। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, आराम से फिर आप लिख लीजिए। यू कैन सिट इन फेसिंग लाइक दिस बैक सो दैट यू कैन सी क्लियरली। ऐसे बैठिए। सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी। सकाम कर्मी कौन होते हैं, कोई कह सकते हैं? ये कर्म निष्ठा का विभाजन जो है सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी में, ये भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। ठीक है, सकाम कर्मी कौन? जो भौतिक, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, विषय भोग के लिए वो अपने कर्म करता है, कर्म के फल का भोग करना चाहता है, सकाम कर्मी। कर्मी मतलब कर्मनिष्ठ है। जैसे कोई व्यक्ति अपना व्यापार करता है, व्यवसाय करता है ताकि खूब पैसे कमाए, खूब भोग करे, यह है सकाम कर्मी। ऐसे कई लोग होते हैं जो धन तो कमाते हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि नहीं, केवल मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेरे भोग के लिए इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, मुझे गरीब लोगों के लिए कुछ दान देना चाहिए, किसी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ दान देना चाहिए, मुझे कहीं कुछ मंदिर बांधना चाहिए, कहीं कुएं खोद देने चाहिए लोगों के लिए। तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, समाज के लिए कर रहे हैं। तो अपने कमाए हुए धन से निराशक्त हैं, वो धन देना चाहते हैं दूसरों को, लेकिन फिर भी अभी तक ऊंचे श्रेणी पर पहुंचे नहीं है, ऐसे लोगों को निष्काम कर्मी कहते हैं। तो वो अपने विधि विधानों में बंधे हुए हैं। तो चाहे कोई सकाम कर्मी हो या कोई निष्काम कर्मी हो, दोनों ही कर्मनिष्ठ कहलाते हैं। और ऐसे कई कर्मियों में से विरला ही कोई एक ऐसे व्यक्ति मिलता है जिसको ज्ञानी कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, तो धर्माचार्यों में से हमने देखा कि कर्मनिष्ठ बहुत थे, 50% से ज्यादा। और ऐसे कर्मनिष्ठ लोगों में से कोटि कर्मनिष्ठ, मतलब एक कोटि कर्मनिष्ठ लोगों में से विरला एक ही कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल जाएगा। तो ये ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो थोड़ा बुद्धिमान है, वो समझ गया है कि मुझे इस संसार के भोग के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये संसार से कोई सुख नहीं मिलेगा। वो इस संसार से परे किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है। उसका ज्ञान अभी तक परिपूर्ण नहीं है, परंतु कोई एक आध्यात्मिक वस्तु की प्राप्ति के लिए वो इच्छुक है। शायद वो ये समझ चुका है कि आत्मा और शरीर में अंतर है, वो समझ चुका है कि इस सृष्टि के पीछे एक आध्यात्मिक चेतना है, भगवान है, और उसकी प्राप्ति करना हमारा कर्तव्य है। और ऐसे कई लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, जो सोचते हैं कि ये सब कर्मनिष्ठ हमें नहीं बनना है, कर्मी नहीं होना है, सकाम हो या निष्काम, हमें शांत होना है, बिल्कुल शांत होकर निराकार में लीन हो जाना है। कई ज्ञानी ऐसा भी सोचते हैं। तो ये है ज्ञानी। तो कोटि कर्मनिष्ठों में से एक कहीं ज्ञानी मिल जाएगा। फिर आगे महाप्रभु कहते हैं, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, ऐसे कोटि कोटि ज्ञानियों में से, लाखों लाखों ज्ञानी लोगों में से विरला एक कोई मुक्त पुरुष मिल जाएगा, जो वास्तव में मुक्त है। वास्तव में मतलब जो मुक्त कहलाता है, वास्तव में नहीं। तो मुक्त कौन है? मुक्त व्यक्ति वो है जो अब समझ चुका है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, और इस स्तर के ऊपर वो कार्य करता है। ऐसे मुक्त लोग तरह तरह के हो सकते हैं, काफी तपस्या, आध्यात्मिक मार्ग का पालन करके, चाहे वो सायुज्य कामी हो सकते हैं। सायुज्य मतलब आप जानते हैं, सायुज्य क्या है? भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाना, भगवान में लीन होना, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और कई ऐसे हैं जो योगी होते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको तरह तरह की सिद्धियां चाहिए, शक्ति, अणिमा, लघिमा इत्यादि। जैसे वो छोटे से छोटे छोटा हो सकते हैं, बड़े से बड़ा हो सकते हैं, हल्के से हल्का हो जाते हैं, भारी से भारी हो जाते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, पत्थर के समान वजनदार हो सकते हैं, जल के नीचे इधर से उधर जा सकते हैं, प्राप्ति सिद्धि, यहाँ वृंदावन में बैठे बैठे बम्बई से हाथ लगाकर कुछ चीज़ ले सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, दिल्ली में बैठे हुए काबुल से अनार निकाल के खा सकता है, प्राप्ति सिद्धि। तो ऐसे सब सिद्धि चमत्कारों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि लोग बड़े विस्मित रह जाएं, आश्चर्यचकित रह जाएं, लोग उनके अनुयायी बन जाएं। तो लोग सोचते हैं कि ये सच्चा आध्यात्मिक जीवन है, लेकिन वास्तव में ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। लेकिन फिर भी कम से कम वो इतना समझ गए हैं, जानते हैं कम से कम बुद्धि से कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है, और ऐसे अवस्था में वो कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में जो मुक्त पुरुष है, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, तो ऐसे कोटि लाखों लाखों मुक्त लोगों में से विरला एक ही कोई व्यक्ति मिलेगा जो कि कृष्ण भक्त होगा। तो कृष्ण भक्त वो है जो कि वास्तव में मुक्त है, क्योंकि जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बनता, वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानता नहीं है सही तरह से। अब उसके मुक्त अवस्था का साक्षात्कार होता है कृष्ण भक्त को, अन्य किसी को नहीं होता। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। शास्त्र में कहा गया है कि वास्तव में मुक्ति क्या क्या चीज है। केवल जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर निराकार ब्रह्म में लीन होना केवल ये मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति तो ये मुक्ति की अवस्था टिकाऊ नहीं है, ज़्यादा समय टिकेगी नहीं ये अवस्था। लेकिन सच्ची मुक्ति की अवस्था वो है जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जीव कृष्ण का दास है। और जब व्यक्ति इस बात को समझ जाता है और इस स्तर के ऊपर जीव व्यक्ति कार्य करने लगता है तब वो वास्तव में मुक्त कहलाता है। इहा यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति इह यस्य हरिदास्य, जो हरि का दास है, कृष्ण भक्त है, कर्मणा मनसा गिरा, जो अपने कार्यों से, जो अपने मन से, जो अपने वचनों से भगवान की सेवा में निखिलाश्व अप्यवस्थासु हर अवस्था में रत रहता है, जीवन मुक्त स उच्यते, जीते जी भी वो मुक्त पुरुष कहलाता है। तो ये सच्ची मुक्ति है। तो केवल कृष्ण भक्त ही वास्तव में मुक्त है। तो ये जो सच्ची मुक्ति की स्थिति है, करोड़ों करोड़ों लोगों में से विरला एक को ही प्राप्त होता है जो कृष्ण भक्त होता है। तो अब शुरुआत से पेपर घुमाएंगे, देखिए कैसे महाप्रभु सारे ब्रह्मांड के 84 लाख योनियों में जो अनगिनत बद्ध जीव हैं उनका विश्लेषण करते हैं, स्थावर जंगम से लेकर नीचे 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 आते 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 मैया अंत तक कृष्ण भक्त तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्राणी हैं इस ब्रह्मांड के भीतर, करोड़ों करोड़ों अनगिनत प्राणी हैं, जीव हैं तरह तरह के योनियों में से, उनमें से सबसे दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है कृष्ण भक्त। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसलिए इसका अब आगे चल के विवरण चैतन्य महाप्रभु करने वाले हैं। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, इसको और जरा पीछे करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक और निवेदन है आप सबसे कि आप इसको कंठस्थ करें, शायद आप में से कई भक्तों को ये कंठस्थ होगा ही, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। ये श्लोक आपने सुना है, आप में से कितने भक्त जानते हैं इस श्लोक को? कई भक्त जानते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल ही अशांत। बहुत महत्वपूर्ण है, इस एक श्लोक में बहुत कुछ है। क्या है इस श्लोक में? कि केवल कृष्ण भक्त ही अकेला व्यक्ति है जो शांत है वास्तव में। बाकी जितने भी तीन श्रेणियों का वर्णन है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, कामी मतलब जो अभिलाषा रखता है, तो कौन सी अभिलाषा है? भुक्ति। भुक्ति मतलब भोग की अभिलाषा जो रखता है, जो भोगी है, जो कर्मी है, जो केवल भोग करना चाहता है इस जगत का, प्रकृति का, भौतिक प्रकृति का, उसको भुक्ति कहते हैं, भुक्ति कामी। उसके बाद मुक्ति कामी। तो भुक्ति कामी है कर्मी, मुक्ति कामी है ज्ञानी। जो लोग निराकार में लीन होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर निराकार में लीन होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति कामी कहते हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जो जिनको सिद्धि कामी कहते हैं। सिद्धि कामी मतलब जो योग अभ्यास, अष्टांग योग का अभ्यास करके ये सब अष्ट सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति इत्यादि। तो ऐसे सिद्धियों के कामी या मुक्ति के कामी या भोग के कामी सब अशांत होते हैं। अगर किसी को लगे कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है, हिमालय में बैठा हुआ है, बहुत शांत है, ओम शांति शांति क्या, लेकिन वो सच्चे शांति की प्राप्ति नहीं कर पाया है। तो बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये तीन जो श्रेणियां हैं वो अशांत क्यों हैं, हमें क्यों ऐसे कहना चाहिए कि ये तीनों लोग हर समय अशांत रहते हैं। अब देखिए, भुक्ति कामी मतलब जो भोगी व्यक्ति है उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपने सुना होगा, एक कवि ने कहा है कि अगर ये सारा आसमान जो है ये कागज बन जाता, ये पृथ्वी के जितने भी सारे वृक्ष हैं वो कलम बन जाते, समुद्र का जितना भी जल है वो अगर स्याही बन जाता इंक, और आसमान रूपी कागज़ में आप लिखते गए आपकी इच्छाएं, ये इच्छा मेरी है, मुझे ये करना है, वो करना है, सारे पेड़ ख़त्म हो जाते, समुद्र का पानी ख़त्म हो जाता, आसमान में जगह नहीं रह जाता, लेकिन हमारी इच्छाओं का लिस्ट जो है वो समाप्त नहीं होता। तो इस संसार में लोगों की दशा ऐसी है, किसी को 1 लाख मिल जाए तो उसको 10 लाख चाहिए, 10 लाख मिल जाए उसको 1 करोड़ रुपये चाहिए, 2 गाड़ी मिल जाए तो 3 गाड़ी चाहिए। तो ऐसे कोई सीमा नहीं है, जितना भी व्यक्ति को मिले वो सदैव असंतुष्ट ही रहता है। तो ये एक विशेष गुण है कर्मियों का कि जितना भी उनको भौतिक धन मिले, भोग मिले, कुछ भी मिले, वो संतुष्ट नहीं होते। अनुभव किया है ना सबने, आपने तो देखा होगा संसार में लोग ऐसे ही होते हैं। फिर मुक्ति कामी, फिर भला ये क्यों मुक्ति कामी शांत नहीं हो सकते? अगर वो मुक्त होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाए वहाँ पर भी क्या उनको शांति नहीं मिलेगी? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, कोई बता सकते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी इच्छा है, लेकिन अब समझ लीजिए कि वो मुक्त हो गए और निराकार ब्रह्म में लीन हो गए, मृत्यु लोक से ऊपर तो पहुंच गया है क्योंकि परम व्योम में आ पहुंचा है, भौतिक ब्रह्मांड के आवरण के को पार करके निराकार ब्रह्म में आ गया है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर चुका है, वैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं कर पाया है, परंतु आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाया है। अब वहां पर ब्रह्म तेज में विलीन हो गया है, फिर भी अशांत क्यों? सक्रियता नहीं है तो इसकी वजह से अशांतता क्यों होनी चाहिए? निष्क्रिय होकर हम शांत नहीं हो सकते? हाँ, सही दिशा में है आप। अग्नि से दूर होने का मतलब क्या है? हाँ, यही पॉइंट है, यही बात है। परम तथा ये सेवा नहीं है वहाँ पे। जीव का स्वरूप क्या है, अभी हमने चर्चा की थी, जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो दास का कर्तव्य क्या होता है? सेवा का। तो निराकार ब्रह्म में लीन होने के बाद भी सेवा का मौका नहीं मिलता है। सबसे बड़ा दंड किसी भक्त को देना है तो क्या दे सकते हैं? सेवा नहीं दो, है ना? भक्तों का संग नहीं और सेवा नहीं, सेवा के बिना भक्त क्या करेगा? सेवा तो करना ही है, सेवा में ही तो रस है। भक्तों के बीच में बैठ के कृष्ण कथा सुनना, कीर्तन करना, भक्तों के साथ कुछ सेवा करना, इसी में तो रस है, इसी में तो आनंद है, इसके बिना क्या है जीवन में? और यहाँ तक कि जब जीव निराकार ब्रह्म में भी लीन हो जाता है और उसको वहाँ सेवा का अवसर नहीं मिलता, जो भगवान से की सेवा करके जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उस चीज का अवसर नहीं मिलता उसको, कोई जीवन में रस नहीं, निरस जीवन, भौतिक दुख नहीं है कोई, यहाँ ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट नहीं है, परंतु रस नहीं जीवन में, आनंद नहीं। जैसे समझिए, कोई अगर आपसे कहता आप 10,000 साल जी सकते हैं, 70 साल 80 साल नहीं, 10,000 साल, 1,00,000 साल भी चाहिए तो जिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अकेले रहना होगा और एक कमरे के अंदर अकेले बैठना होगा, या तो फिर आप 60 साल 70 साल जिए लेकिन सबके साथ मिलजुल कर रहिए, आप क्या चयन करेंगे?
60 साल।
कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा नहीं मुझे 1 साल की आयु चाहिए लेकिन अकेले बंद कमरे में अकेला रहूंगा, कोई नहीं रहेगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्या करेगा वो, रस नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई सेवा नहीं किसी के साथ, और प्रेम नहीं, झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। कम से कम आदमी दूसरे के साथ झगड़ा तो करे, कुछ तो हो, यहाँ कुछ भी नहीं। तो निराकार ब्रह्म में ऐसा है, भौतिक दुख नहीं है, शांति है, लेकिन शांति से क्या चाहिए, क्या क्या होगा? जीव शांति का भूखा नहीं है, जीव किस चीज का भूखा है? प्रेम का, भक्ति का, रस का, और वो रस जो है वो निराकार ब्रह्म में भी नहीं मिलता है, वहां केवल शांति है, दुखों का निवारण है। लेकिन इससे आगे पॉजिटिव आनंद नहीं, और जीव का स्वरूप है आनंदित होना, सच्चिदानंद विग्रह। जैसे कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, जीव भी सच्चिदानंद है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये लोग जो ज्ञानी लोग हैं, मायावाद इत्यादि, बहुत कड़ी तपस्या वगैरह करते हैं, संस्कृत पाठ करके वो श्लोकों का तोड़ मोड़ करके अपना ही निष्कर्ष आगे रखते हैं, और इतना सब तपस्या वगैरह करने के बाद उनको कोई रस नहीं मिलता उनकी साधना में, तो फिर अपने आध्यात्मिक कार्यों से उतर कर फिर यहाँ के समाज कल्याण के कार्य में लग जाते हैं। कोई स्कूल खोलता है, कोई अस्पताल खोलता है, कोई अंधों के लिए कुछ करता है, ऐसे कार्यों में लग जाते हैं अपनी आध्यात्मिक साधना भूलकर। आपने देखा ना कितनी ऐसी संस्थाएं हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे भौतिक समाज कल्याण के कार्य को आध्यात्मिक जीवन समझते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मायावादी सन्यासी लोग भी हैं। तो प्रभुपाद कहते थे अगर आप वास्तव में सन्यासी हैं तो आप फिर से इस तथाकथित समाज कल्याण के कार्य में क्यों आए? तो कौन सा श्लोक है जो आपने बताया, महत्वपूर्ण श्लोक याद है? कौन सा श्लोक पूरा बताइए, किसने कहा है ये श्लोक? ब्रह्मा जी ने। कौन से स्कंद में? दशम स्कंद में। कौन सा श्लोक है वो? येन्ये रविनदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतं त्यदो अनादृत युष्मत अंग्रयः। इसका मतलब क्या है? ये अन्य जो आपके भक्त नहीं है, हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री कृष्ण से, जो अन्य लोग हैं, भक्त नहीं, अरविंद अक्ष, भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है अरविंद अक्ष। अरविंद मतलब लोटस, कमल, अक्ष आंखें, कमल नयन, राजीव लोचन, भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम है। तो वो कहते हैं कि हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, जो अन्य लोग हैं त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, और विमुक्त मानिनः, वो अपने आप को मुक्त मानते हैं कि हम मुक्त हो गए, मुक्ति की अवस्था को हम प्राप्त कर गए, लेकिन वास्तव में नहीं प्राप्त किया उन्होंने मुक्ति की अवस्था को। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, बहुत कड़ी कड़ी तपस्या करने के बाद ऊपर चढ़ चढ़ के शायद वो अपने आप को इस स्तर तक भी पहुंचा लिए हों जैसे निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हो, और इस तरह से सोचते हैं कि हम परम पद को प्राप्त कर गए, परम पदम ततः, ऐसे सोचते हैं वो, लेकिन सच्ची बात नहीं है। लेकिन पतंती अधः, उनका पतन हो जाता है, फिर से नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं? अनादृत युष्मन अंग्रयः, अंग्री, अंग्री मतलब चरण, पंकज अंग्री, हमारे मायापुर मंदिर के एक पुजारी है ना, पंकज अंग्री, पंकज मतलब कमल, तो चरण कमल, पंकज अंग्री, तो अंग्री तो मतलब चरण भगवान के, युष्माद अंग्रयः, तो जिन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है, इसलिए वो निराकार ब्रह्म लीन होने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं, फिर से उनका पतन हो जाता है इस भौतिक जगत में। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई जीव निराकार ब्रह्म की प्राप्ति भी कोई करे, लेकिन उसको निरस जीवन होने की वजह से आज नहीं तो कल फिर से उसका भौतिक जगत में पतन हो जाता है। वो चैन सोचता है कि भले मैं भौतिक जीवन में दुख स्वीकार करूं, लेकिन ये अकेले रहना निरस जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर से पतन हो जाता है उसका। इस प्रकार से भुक्ति तो असंतुष्ट है ही, लेकिन मुक्ति कामी और मुक्त अवस्था को प्राप्त किए वाला आदमी भी असंतुष्ट रहता है। और फिर सिद्धि कामी किस तरह से असंतुष्ट है, वो तो चाहता है कि मुझे इतने सारे जादू चमत्कार की शक्तियां मिले जिससे कि लोग मेरे पीछे पीछे भागे, मैं थोड़ी सी विभूति निकाल दूं, थोड़ा सा सोना यहाँ से निकाल दूं, लोग मुझे भगवान कहेंगे, लोग मुझे बहुत धन देंगे, मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाऊंगा, मुझे लोग भगवान कहेंगे। ऐसे कई लोग हैं, आप जानते हैं ना, तो ऐसे लोग थोड़ा विभूति निकालते हैं, थोड़ा सोना निकालते हैं और लोग सोचते हैं अरे वाह कितने बड़े साधु हो गए। अरे साधु कोई सोने का कारखाना थोड़ी है, साधु का मतलब है कि सोना प्रदर्शित करे, ये तो साधु की परिभाषा नहीं है। साधु वो है जो भगवान का भक्त है, जिसके अंदर वैष्णव गुण है, ये सच्चा साधु है। शास्त्रों में ऐसे कहीं नहीं कहा गया है कि साधु वो है जो सोना पैदा कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति इतना सा सोना पैदा करे लोग उसको भगवान मानते हैं, अरे भगवान तो वो है जो सोने की खान बनाए, वो आदमी भगवान है, ठीक है मान सकते हैं। इतना सा सोना निकालने से कोई व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है? तो ये लोग केवल ऐसे ही कुछ चाहते हैं, उनको प्रतिष्ठा चाहिए, अनुयायी चाहिए, शिष्य चाहिए, और इसलिए वो लोग भी हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में भौतिक कामना है सूक्ष्म या स्थूल, वो शांत भला कैसे हो सकता है, कभी नहीं होगा। तरह तरह की कामनाएं स्थूल या सूक्ष्म जब तक है व्यक्ति अशांत रहेगा, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। केवल कृष्ण भक्त ही है जिसके मन में कोई भौतिक कामना नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि कृष्ण भक्त के मन में कोई इच्छा नहीं है? निष्काम का क्या मतलब है कि कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए? हाँ, इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। किस तरह की इच्छा होनी चाहिए? भगवान की सेवा की इच्छा होनी चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि जीव कोई पत्थर नहीं है कि उसके अंदर इच्छा नहीं है। आप इच्छा या क्रियाशीलता को नष्ट नहीं कर सकते। जीव का स्वभाव है इच्छा करना, जीव का स्वभाव है क्रियाशील रहना, लेकिन जब ये क्रियाशीलता, जब ये इच्छा भगवान से भिन्न किसी अन्य वस्तु के ऊपर केंद्रित हो जाता है तो उसको अन्य कामी कहते हैं, अन्य कामी। लेकिन हमें क्या होना है? कृष्ण कामी, कृष्ण की कामना करना, कृष्ण की सेवा को चाहना, ये कोई बुरी बात नहीं, ये सच्चा विचार है, ये हमारे स्वरूप के अनुसार इच्छा है। और इसलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं चाहते, हमेशा वो संतुष्ट रहते हैं। फिर आगे इस बात की पुष्टि महाप्रभु श्रीमद् भागवत के एक महत्वपूर्ण श्लोक से करते हैं। अच्छा, इस श्लोक को आप याद रखेंगे ना, आप में से जिनको कंठस्थ नहीं है याद रखेंगे ना, सबसे एक बार फिर से एक बार हम लोग उच्चारण करें श्लोक का। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। फिर से करें। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले अशांत। तो ये आपका गृह पाठ है, होमवर्क। आप ये कल दो श्लोक दिए थे और ये एक श्लोक, ये कृपया आप पाठ कर लीजिए, ठीक है। और इसका प्रमाण महाप्रभु ने और एक श्लोक में कहा, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आप में से जिनको श्लोक कंठस्थ करने में रुचि है, ये भी श्लोक आप कृपया कंठस्थ कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आता है। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने। आप सब साथ में बोलिएगा, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, ऐसे कई मुक्त लोगों में से, कोटिश्व अपि कोटि, ऐसे कोटि कोटि मुक्त लोगों में से या सिद्ध लोगों में से, सिद्ध मतलब भौतिक दृष्टि से सिद्ध, योगाभ्यास के माध्यम से सिद्ध, ऐसे लोगों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे कोटि कोटि मुक्त पुरुष और सिद्ध पुरुष में से कोई एक व्यक्ति जो कि नारायण परायण है, जो कृष्ण नारायण भक्त या कृष्ण भक्त है, वो सुदुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत जो कम पाए जाते हैं, सुदुर्लभ मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं। नारायण परायण है, मतलब जो कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे कोटि कोटि मुक्त और सिद्ध पुरुषों में से विरला ही एक कोई कृष्ण भक्त मिल जाएगा। और उसकी विशेषता क्या है? प्रशांत आत्मा, प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत, जो बहुत संतुष्ट है, शांत है, पूरी तरह से शांत। किसी का नाम प्रशांत हो सकता है, लेकिन वो सचमुच प्रशांत है या नहीं वो दूसरी बात। किसी का नाम विवेक है, शायद विवेक ना हो उसकी। किसी का नाम है सौम्य, लेकिन हो सकता है वो सौम्य नहीं है। किसी का नाम है विनीत, हो सकता है विनीत नहीं है। उसी तरह से प्रशांत, प्रशांत क्या है? प्रशांत आत्मा जो प्रकृष्ट रूपेण शांत है, पूरी तरह से शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि वो कृष्ण भक्त है, नहीं तो और कोई कारण नहीं है इसके लिए, यही एकमात्र उपाय है। तो दो प्रकार की इच्छाएं हैं। कौन सी दो प्रकार की इच्छाएं बताइए? अभी कहा था, एक कृष्ण की सेवा और दूसरा अन्य कोई भी इच्छा। कृष्ण की सेवा से अलग कोई भी इच्छा हो वो माया की सेवा है, या माया की सेवा या कृष्ण की सेवा। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेमना, आत्मेंद्रिय इच्छी से तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में अन्य जगह चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, जो अगर हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम कोई इच्छा रखते हैं, तारे बोली काम, इसको काम कहते हैं, लस्ट। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, लेकिन कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा रखेंगे, इसको प्रेम कहते हैं। तो केवल कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, यही सही इच्छा है। अन्य कोई भी इच्छा हो वो माया की सेवा है, माया की इच्छा है। अन्य अभिलाषा, कृष्णाभिलाषा और अन्य अभिलाषा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो उत्तम भक्ति वो है जिसमें भक्त के हृदय में अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, न उसको बड़ा ज्ञानी बनना है, न उसको बड़ा योगी बनना है, न उसको भोगी बनना है, उसको केवल कृष्ण का दास बनना है, कृष्ण की सेवा करनी है। यही एकमात्र प्रामाणिक इच्छा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से नारायण परह या नारायण परायण है, ये बहुत दुर्लभ है, और जहाँ भी ऐसे लोग जाते हैं वो कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से अब बद्ध जीवों की स्थिति का वर्णन करने के पश्चात अब एक नया विषय शुरू करने वाले हैं, बल्कि इससे जुड़ा हुआ लेकिन एक दूसरा विषय। अब अगले श्लोक से महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति लता के बारे में सुनाने वाले हैं। ये बहुत ही सुंदर विषय है, तो कृपया जरा ध्यान से सुनिएगा। तो भक्ति लता ये क्या है? भक्ति की लता पहुंचते पहुंचते हमारे हृदय से आके वो सीधे जाती है भगवान कृष्ण के धाम में। तो ये भक्ति लता का जन्म कैसे होता है, कैसे ये बढ़ता है, और बढ़कर परिपक्व अवस्था में होकर परिपूर्णता कैसे प्राप्त करता है, इसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप तो जानते हैं कि अगर कोई पेड़ आपको चाहिए, पौधा चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? सीड चाहिए, बीज। बीज है ना, बीज की शुरुआत, सब चीजों की शुरुआत बीज से होता है। आप देखिए दुनिया में कोई भी चीज हो उसके पीछे एक बीज है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक बड़ा सा कारखाना है, फैक्ट्री है, लेकिन उसके पीछे भी एक बीज है ना। क्या है वो बीज? एक बड़े फैक्ट्री का कारखाना क्या है बताइए? विचार, आइडिया, कोई दिमाग है ना। वो जो मालिक है फैक्ट्री का, उसने सोचा ना मुझे इस चीज को करना है, मुझे इस चीज का उत्पादन करना है इस कारखाने में, फैक्ट्री में, तो इसका प्लानिंग मैं ऐसे करूंगा, यहाँ ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो बहुत सोच विचार करके उसने कारखाना खड़ा कर दिया है ना। तो इसका बीज फैक्ट्री तो बाद में खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे कितना प्लानिंग चलता है, कितना को ड्राइंग करेंगे, सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। तो हर चीज, हर कार्य करने के पीछे एक बीज है। इस सृष्टि के पीछे भगवान का विचार है। भगवान ने सोचा कि सृष्टि के का निर्माण जो इस प्रकार से हो गया। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च परास शक्ति विविधाई विश्वते। भगवान के अनंत शक्तियां हैं और केवल भगवान की इच्छा करने मात्र से उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं उनकी शक्तियों के माध्यम से। तो यह है बीज। तो उसी प्रकार से भक्ति के लिए भी एक बीज चाहिए। तो ये बीज कैसे प्राप्त हो सकता है ये भक्ति लता के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं। इस श्लोक को भी आपको कंठस्थ करना ही चाहिए, ठीक है? अंतिम दिन आप सब बोल सकते हैं और जो सारे श्लोक कंटेस्ट करेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा, ठीक है? जितने भी श्लोक कंटेस्ट करने के लिए बताया गया है, अगर कोई भक्त सारे श्लोकों को कंटेस्ट करे आपको एक गिफ्ट, ठीक है? तो तैयार है रहिए, अभी 3 दिन और हैं, ठीक है ना? और ये कौन सा श्लोक है? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। आप में से कितने भक्तों ने श्लोक सुना है? कंठस्थ सबको है? नहीं। ये तो आसान श्लोक है, सभी को जान लेना चाहिए। इसका श्लोक क्या है? ब्रह्मांड भ्रमिते, सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद कोनो भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीव को गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु और कृष्ण दोनों के प्रसाद से, उनकी कृपा से पाए, स्वीकार मिल जाता है। क्या मिलता है? भक्ति लता का बीज मिल जाता है। इसके पहले महाप्रभु वर्णन कर चुके हैं, हमने देखा है कि कितने लाखों लाखों करोड़ों प्राणियां हैं अलग अलग योनियों में, इनका विभाजन किया महाप्रभु ने, विश्लेषण किया। तो ऐसे कितने करोड़ों करोड़ों बद्ध जीवों में से विरला एक कहीं भाग्यवान जीव मिल जाएगा जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिल जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ इस तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हैं कि जब हम ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं, केवल इस एक ब्रह्मांड का नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है इस भौतिक सृष्टि में, और इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भीतर अनंत कोटि जीव है, तो जीवों की संख्या अनगिनत है। और ऐसे घूम फिर कर कोई ऐसे जीव हैं जो जमीन पर रहते हैं, कोई आसमान में, कोई पानी में, लेकिन ऐसे करोड़ों जीवों में से ऐसे वो कौन सा भाग्यवान जीव है जिसको कृष्ण भक्ति मिल जाता है। भगवान कृष्ण जो है वो सबके हृदय में विराजमान है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है ना। भगवान गीता में भी कहते हैं कि सबके हृदय में मैं स्थित हूं। तो सबके हृदय में स्थित होकर भगवान सारे प्राणियों की, जीवों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। अनादि काल से भगवान यही करते आए, सारे प्राणियों की इच्छा पूर्ण करते हैं। और जब भगवान कृष्ण देखते हैं हृदय में स्थित होकर कि किसी व्यक्ति को मुझे प्राप्त करने की इच्छा है, तनिक भी लेश मात्र भी इच्छा जीव के अंदर है, तो भगवान उस इच्छा को पूर्ण करते हैं, भगवान उस जीव के ऊपर कृपा देते हैं। कैसे कृपा देते हैं भगवान कृष्ण? गुरु के द्वारा, उसके उसको गुरु से मिला देते हैं। गुरु और शिष्य का मिलन, या जब किसी व्यक्ति को वैष्णवों से मुलाकात होता है, वैष्णवों से वो मिल जाता है, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। अब समझ लीजिए, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है अपने व्यापार में, या किसी दो व्यक्तियों का विवाह है। हम देखते हैं कितने लोग अखबार में भी ढूंढते हैं वर वधु को मिलाने के लिए, कितने सारे लोग प्रयत्न करते हैं, ज्योतिष ये वो, तो वो उनके कपाल में जैसे लिखा है वैसे होना है। तो ये दो लोगों का मिलन जो है वो कर्म के नियमों के अनुसार चलेगा। एक व्यक्ति को ऐसे ही पत्नी मिलेगी, ऐसे ही पति मिलेंगे, ऐसे मित्र शत्रु मिलेंगे जैसे उसके भाग्य में लिखा है। ये भाग्य क्या है? ये भौतिक भाग्य है, उसके कर्म के अनुसार, पूर्व किए हुए कर्म के अनुसार। लेकिन भक्तों से मिलना, एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु से मिलना, ये अपने भौतिक कार्य की बात नहीं है, ये भौतिक क्षेत्र में नहीं है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है, आध्यात्मिक शक्ति का कार्य है ये। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस चीज को संभव कराते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानां यंत्रारूढानि मायया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और उनके भ्रमण को मैं नियंत्रण करता हूं। तो अक्सर हम कहते हैं कि मैं बाय चांस इस व्यक्ति से मिल गया, मैं बाय चांस ऐसे सड़क पर जा रहा था और मैंने उन भक्तों को देखा। कितने लोग ऐसे कृष्ण भक्त बन गए, चलते चलते बाय चांस कोई उनके पास आया पुस्तक वितरण करने के लिए। महाशय आप ये पुस्तक लीजिए, भगवद गीता है। कोई ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनको कृष्ण भक्त मिल गया सामने सीट में। अच्छा आप कौन हैं? हम इस कौन से कृष्ण भक्त? ये लीजिए भगवद गीता लीजिए। अच्छा, उसकी भक्ति की जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो मिलन है, जो मुलाकात है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। हालांकि दिखने में तो ऐसे ही लगता है कि दो लोग मिल रहे हैं जैसे लाखों और लोग दुनिया में मिल रहे हैं। ट्रेन में सफर करते करते लाखों लोग हमें मिल जाते हैं, तो लेकिन ये जो मुलाकात है ये साधारण नहीं है। ये भगवान की योजना से, भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। दोनों व्यक्तियों का मिलन भगवान कृष्ण करा रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय में भगवान ने देखा, समझ लिया कि तनिक एक इच्छा है कुछ उनको जानने के लिए, तो भक्तों से मिला दिया। और इच्छा ज्यादा तीव्र है तो किसी ऐसे बहुत ही आध्यात्मिक गुरु के, जो कि बहुत साक्षात्कारी वैष्णव है, ऐसे वैष्णव से मिला देंगे। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ये है कि वो भक्त किसी व्यक्ति को एक प्रामाणिक वैष्णव से मिला देते हैं, और वैष्णव को कहते हैं अब आगे की बात आप संभालो। भगवान की कृपा से एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त होते हैं, एक प्रामाणिक गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं, एक प्रामाणिक वैष्णवों का संग। ये आप अच्छी तरह से आप स्मरण याद करिएगा, इसको याद रखिए हमेशा अपने हृदय में, अच्छे पत्थर के ऊपर लकीर जैसे शब्दों में लिख दीजिए कि भगवान की कृपा से वैष्णवों का और गुरु का संग मिलता है, और गुरु और वैष्णवों के संग से, उनकी कृपा से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान गुरु और वैष्णवों के पास भेजते हैं, गुरु वैष्णव भगवान के पास ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है कोई वैष्णव के संग के लिए, तो भगवान वो व्यवस्था कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई न कोई कार्य अवश्य किसी व्यक्ति ने किया हुआ होना चाहिए उसको वैष्णवों का संग प्राप्त करने के लिए, भगवान के पास आने के लिए। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भगवान की मूर्ति के सामने नमस्कार करे, दंडवत करे, या किसी भक्त से मिले और उस भक्त से कुछ दो शब्द सुने, तो उसको वो पूंजी प्राप्त हो जाती है जिससे कि वो भगवान की ओर अग्रसर हो सकता है। हर एक कोई बड़े आदमी के पास जाने के लिए कोई योग्यता चाहिए ना आदमी को। अभी समझ लीजिए प्रधानमंत्री के पास जाना है तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है नहीं। आपको कोई बीच वाला व्यक्ति चाहिए ना कि उसके, हाँ उसके हम चाचा को जानते हैं, उसके पड़ोसी को हम जानते हैं, उसके लड़के का फ्रेंड जो है, मित्र जो है, वो मेरा मित्र है, तो हम ऐसा कुछ ना कुछ जान पहचान निकाल कर हम चले जाते हैं। तो कुछ तो योग्यता चाहिए। या अगर हमारे पास बहुत धन है, बड़े उद्योगपति हैं हम, तो हमारे धन के बल पर हम उनसे मिल सकते हैं, उनको मिलना ही चाहिए क्योंकि उनको भी धन चाहिए। तो भगवान से मिलने के लिए हमें क्या योग्यता चाहिए, उसमें हमारा धन काम नहीं करेगा। लेकिन सिफारिश किसी को करना चाहिए हमारी ओर से, अगर हम कोई वैष्णव को मिल जाए, एक बार वैष्णव हमारे ऊपर प्रसन्न हुए, तो बस भगवान की ओर आगे जाने के लिए हमें वो शक्ति, वो योग्यता मिल जाती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहां उदाहरण दे रहे हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण के पास आते हैं वैष्णव के संघ के माध्यम से, वो बहुत भाग्यवान है क्योंकि उनको दोनों भक्तों की और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण एक कथा, वो है नारद मुनि की कथा, नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा, जो कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णित है। आप सबने सुना होगा, सबने हाथ ऊपर, जिन्होंने नहीं सुना है हाथ ऊपर कीजिए। नारद मुनि की कथा, पूर्व जन्म में नारद मुनि कौन थे? दासी पुत्र थे। और क्या सौभाग्य हुआ उनको, चातुर्मास में साधुओं का संग हुआ, कई भक्ति वेदांत लोग वहां पर आए थे, और उनकी माँ जो है वो इन भक्ति वेदांतों की सेवा में लगी हुई थी। 4 महीने ये साधु जो है भक्त, कृष्ण भक्त थे, वो पास में बैठकर भजन कीर्तन कथा किया करते थे, भगवान की सेवा किया करते थे। और उस समय नारद मुनि, उस समय तो नारद मुनि नहीं थे, जो भी नाम था उनका, उस समय वो छोटे ही बालक थे, 5 साल के, लेकिन अन्य बालकों की तरह नटखट, वो जो शरारती नहीं थे, बहुत सौम्य थे, और शांति से आकर इनके पास में बैठते, इनकी कथा सुनते और उनकी सेवा करते। और एक बार उनकी अनुमति से उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद, महाप्रसाद उन्होंने ग्रहण किया, जिससे कि उनके हृदय में भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा जागृत हो गई। और भगवान की योजना से, भगवान की कृपा से उनकी माता का देहांत हो गया। जब वो गाय का दोहन करने जा रही थी माता सूर्यास्त के समय, तो एक सांप ने डस लिया, काट लिया, और उनकी मृत्यु हो गई। तो उस बालक ने सोचा, क्या सोचा, मुक्त हो गए, अब कोई हमें आसक्ति नहीं दुनिया में, हालांकि छोटा बच्चा था, अब फ्री हो गए हम भगवान की प्राप्ति के लिए, अब हम जाएंगे घूमेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। घूमते फिरते नगरों में से, जनपदों में से, वनों में, गोचर भूमियों में, सब जगह घूमते 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 एक बार बैठ गए वृक्ष के नीचे, ध्यान में बैठे, और स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। दर्शन लिया। और अंततः उस जीवन के बाद जब उनको प्राण त्यागना पड़ा, फिर अगले जीवन में वो नारद मुनि बन गए। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नारद मुनि की इस कथा को सुनकर हमें पता चल सकता है कि वैष्णव की कृपा प्राप्त करने का महत्व कितना है। अगर किसी ने वैष्णव की सेवा की तो बस उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए हम सब जो कि इस्कॉन संस्था में आए हैं, किस लिए आए हैं? अमेरिका जाने के लिए? बहुत पैसा कमाने के लिए? किसके लिए? कृष्ण भक्ति करने के लिए। ये हमारा उद्देश्य है, इसलिए हम लोग आए हैं। तो इस उद्देश्य को अगर हम लोग अपने मन में अच्छी तरह से रखेंगे, हर अवस्था में कोई भी कार्य करते समय मन में हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए, हम क्यों यहाँ आए हैं, इस्कॉन में क्यों आए, कृष्ण भक्ति करने के लिए। हमें शुद्ध भक्त बनना है, और अगर बनना है, अगर दृढ़ निश्चय है हमारा कि हमको ये करना ही है, तो नारद मुनि से प्रेरणा प्राप्त करके हमें अन्य वैष्णवों के साथ में क्या करना चाहिए? झगड़ा करना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनका संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भक्तों का संग करना मतलब क्या, ये अगले श्लोक में हम सुनेंगे। लेकिन भक्तों के संग में रहकर उनकी सेवा करना चाहिए। वैष्णवों की सेवा के बिना और कोई उपाय नहीं। तो वैष्णवों का संग एक सेवा के लिए अवसर है। तो हमारे से कोई वरिष्ठ हो या न हो, कोई नया भक्त भी हो, ऐसे भक्त की सेवा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए, अरे मैं तो वरिष्ठ भक्त हूँ, ये तो नया भक्त है, बल्कि उसको मेरी सेवा करनी चाहिए। नहीं, भक्त भक्त है। तो सारे वैष्णवों को अगर हम भगवान का प्रतिनिधि समझेंगे और उनको हृदय से उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ में बैठ के कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण सेवा करते रहेंगे नम्रता से, तो फिर बहुत ही शीघ्र हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, जैसे कि नारद मुनि को हुआ। अगर हमारे हृदय में हमने घमंड रखा, मान सम्मान की अपेक्षा की कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं अन्यों की सेवा क्यों करूँ, तो उस हद तक कृष्ण भक्ति हमसे दूर रहेगी। तो इस प्रकार से भक्ति लता बीज को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, इसका वर्णन महाप्रभु यहाँ कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भक्ति लता, ये भक्ति जो है ये हृदय में, सबके हृदय में है, लेकिन उसको पुनः जागृत करने के लिए भक्तों का संग चाहिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है नित्य रूप से जीव के हृदय में है। साध्य कबुनय कोई बाहर से प्राप्त करने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कृष्ण प्रेम हम कहीं दूसरी जगह से लेकर हमारे हृदय में डाल रहे हैं, नहीं, कृष्ण प्रेम तो हमारे हृदय में है। साध्य कबुनय बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रवण आदि श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, ये सब चीजें भक्ति के विधि विधानों का पालन भक्तों के संग में करके फिर क्या होगा, धीरे धीरे से इसका उदय हो जाएगा। शुद्ध चित्ते तरह उदय, फिर हृदय शुद्ध हो जाएगा। ऐसे शुद्ध चित्त में श्री कृष्ण उदित होंगे, कृष्ण भक्ति का उदय होगा। तो इस समय हम समझ सकते हैं कि जब हमें भगवान श्री कृष्ण भक्तों का संग देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है। तो भगवान की कृपा तो हो गई, अब इसका फायदा उठाना है हमें। अगर हम वैष्णव अपराध करने लगे, वैष्णवों की सेवा हमने नहीं की, हमारा अहंकार, हमारा घमंड, हमारा स्वार्थ बीच में आया, तो भगवान की कृपा को हमने ठुकरा दिया, यही मतलब हो जाता है। तो भगवान की कृपा स्वीकार करने का मतलब है कि उन्होंने हमें भक्तों का संग का लाभ दिया है, इसका पूरे से पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें वैष्णवों के दासानुदास बन के रहना चाहिए। ये अगर हमारी भावना रहेगी तो शीघ्र अति शीघ्र हम ऐसे तेजी से एक्सप्रेस गाड़ी में भक्ति में प्रगति करेंगे, कोई संशय नहीं इसके बारे में। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो गोलोक वृंदावन पर शॉर्टकट लेना चाहता है, वो वैष्णवों की सेवा करेगा। जो बुद्धिमान नहीं है वो सोचेगा कि मैं केवल मेरे साधना के बल पर कर सब कुछ कर दूंगा, मैं केवल शास्त्र पढ़ के करूंगा। ये तो जरूरी है, साधना तो अच्छी तरह से करना ही है, किताब प्रभुपाद के भी रोज पढ़ना ही है, लेकिन जब तक हम वैष्णवों के सेवक नहीं बनेंगे तब तक नाम में भी रुचि नहीं आएगी और शास्त्रों में भी रुचि नहीं आएगी, शास्त्रों की बात समझ में भी नहीं आएगी, सच्चा कोई फर्क हृदय में नहीं पड़ेगा। भक्ति केवल तपस्या की बात नहीं है, विद्वत्ता की बात नहीं है, भक्ति सेवा की बात है, सेवा भाव की बात है। ऐसा करने से भगवान की कृपा वास्तव में प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से वैष्णव मिल जाते हैं, वैष्णवों की सेवा करके वैष्णवों की कृपा प्राप्त हो जाती है, और फिर से वैष्णवों की कृपा प्राप्त होने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये बढ़ते रहता है, ये चक्र ऊपर 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 हमें उठा के ले जाता है, अंततः शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिल जाता है। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब हो गई बात भक्ति ली बीज की प्राप्ति की, अब भक्ति बीज प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब बीज प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए उसको, बीज हाथ में आ गया आपका, आप किसान हैं, आपके हाथ में एक बीज आ गया, अब क्या करेंगे आप बीज का, बोएंगे, बोने के बाद सिंचाई करेंगे ना, सेचन करेंगे। तो इसके बारे में महाप्रभु आगे यहाँ पर कह रहे हैं, वो कहते हैं हम सबको रूप गोस्वामी के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि आप सबको माली बनना चाहिए। माली, माली कौन है, माली जानते हैं ना, जो गार्डन में काम करता है। माली होना, माली माली होना करो से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जल करो ऐसे चन। सुंदर श्लोक देखिए, बीज के आरोपण के बारे में बात करते हैं, बीज के सेचन के बारे में बात करते हैं, सिंचाई के बारे में। माली होना कि ठीक है रूप गोस्वामी, अब जिस व्यक्ति को ये भक्ति लता का बीज प्राप्त हो चुका है, अब उसको चाहिए कि वो एक माली बन जाए। माली बन के क्या करे, से बीज आरोपण, इसका आरोपण करे। कहां पे, जब किसान बीज को लेता है तो कहां पे बो देता है उसको, जमीन में। किस तरह के जमीन में बोता है, उपजाऊ, उपजाऊ जमीन हो कोई, है ना, वो जाके किसी पत्थर के ऊपर डालता है बीज, कहीं रेगिस्तान में डालता है, अग्नि में डालता है, नहीं, ऐसे कोई उपजाऊ जमीन में जाके उसको बो डालता है। तो उसी तरह से भक्ति लता का बीज तो है, लेकिन वो जमीन, वो क्षेत्र कौन सा है जिसमें उसको बोना है, हृदय, हृदय। तो हृदय कैसे होना चाहिए, पत्थर की तरह होना है या उपजाऊ जमीन की तरह होना है, उपजाऊ जमीन। तो उपजाऊ जमीन मतलब हृदय का क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कोमल, नरम, सेवा भाव होना चाहिए। जब तक घमंड होगा, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ, नहीं होगा कुछ नहीं। जब हम नम्र रहेंगे, सहनशील रहेंगे, हमारे अंदर सेवा भावना रहेगी, तो ये जमीन जो है बहुत उपजाऊ हो जाएगा। कोई खत की आवश्यकता नहीं है, फर्टिलाइजर डालने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप हरा भरा हो जाएगा सब कुछ। फिर भक्ति लता ऐसे उगेगा कि बस चमत्कार की तरह हो जाएगा। तो हमारे हृदय को हमें तैयार करना है, नम्र बनाकर, उसको कोमल बनाकर, ताकि भक्ति लता बीज जो बो सके हम हमारे हृदय में। और आरोपण करने के बाद क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी, सेचन करना चाहिए। तो सिंचाई माली किससे करता है, जल से करता है ना। तो यह भक्ति लता बीज का आरोपण, ये जो सिंचाई है वो कैसे करना चाहिए, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो जल है श्रवण और कीर्तन, मतलब भक्तों के बीच में आकर श्रवण और कीर्तन करना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भक्तों का संग करना इसका क्या मतलब है? श्रवण कीर्तन करना, केवल भक्तों के शारीरिक संपर्क में रहना यह भक्तों का संग नहीं है। एक बार हमें याद है कई साल पहले कोई भक्त मिलकर सिनेमा देखने गए, तो मैं पकड़ा, सिनेमा क्यों गए तुम, तुमको मालूम है ये तुमको ये ठीक नहीं, नहीं हम सब भक्तों के संग में गए ना, ये कोई भक्तों का संग है, इसको सत्संग कहते हैं। अरे केवल भक्तों के साथ रहना ये सत्संग नहीं है, ये सच्चा संग नहीं है भक्तों का संग। भक्तों के साथ मिलकर हम सिनेमा देखने जाएं, कोई होटल में खाने जाएं, कोई गलत काम करें, ये सत्संग नहीं है। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि भक्तों का संग करना इसका मतलब है श्रवण कीर्तन करना। किसका श्रवण कीर्तन करना? कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करना, कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन करना, ये संग है। यूं ही भक्तों के संग में रह के कुछ प्रजल्प करना, कुछ और गलत काम करना, ये संग नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए पतन के लिए सबसे आसान मार्ग है। जो भक्तों के संग में रहकर अपना समय बर्बाद करता है, जो अच्छी तरह से इस अवसर का उपयोग नहीं लेता, फायदा नहीं लेता है, वो तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि वो ऐसा है कि मानो जिसको एक अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है और उसको कांच के टुकड़े के समान इस्तेमाल कर रहा है, उसको सोचता है कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्रवण कीर्तन की पद्धति को स्वीकारना हालांकि जरूरी है, लेकिन फिर इस साथ साथ अर्चना पद्धति भी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है श्रवण कीर्तन ही सब कुछ है, तो हम केवल जप करेंगे, प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे, हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे, मंदिर में दर्शन करने नहीं आएंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। ये हरिदास ठाकुर जैसे लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अन्यों के लिए ठीक नहीं है। सबको चाहिए कि वो भी अर्चना पद्धति को स्वीकार करें। अगर हमें पुजारी सेवा न हो तो कोई बात नहीं, जब मंदिर में आते हैं हम भगवान का दर्शन करते हैं, ये भी तो अर्चना पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवान का दर्शन करना, चरणामृत का पान करना, भगवान के सामने आकर कीर्तन करना, नृत्य करना, भगवान के सामने आकर भगवान की स्तुति करना, कुछ प्रार्थना करना भगवान से, आध्यात्मिक प्रार्थना, ये सब अर्चना पद्धति के ही अंग है अलग अलग। तो अर्चना पद्धति और श्रवण कीर्तन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए मंदिर नहीं जाएंगे हम, केवल अपने यहाँ बैठकर श्रवण कीर्तन करेंगे, ऐसा है। तो प्रभुपाद इस बात को यहाँ पर जोर दे रहे हैं। आगे प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं कि गुरु प्रसाद का तात्पर्य ये है कि जो गुरु होते हैं, जो परम वैष्णव होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, क्योंकि वो सबसे मूल्यवान वस्तु शिष्य को प्रदान करते हैं। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्णा, कृष्ण भक्ति को प्रदान करना ही सबसे अनमोल भेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से व्याख्या कर रहे हैं कि भक्ति लता बीज भक्ति का उद्गम है, जब तक ये हमें प्राप्त नहीं होता हम कृष्ण भक्त नहीं हो सकते, और हमें ठीक इस उद्देश्य को हमारे मन में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ठीक है, भक्ति लता की चर्चा में हम दो विषयों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। भक्ति लता बीज कैसे प्राप्त होती है, प्राप्त करने के बाद इसका आरोपण कैसे होता है, और इसकी सिंचाई कैसे होती है। अब आगे चल के सिंचाई करने के बाद ये इसकी वृद्धि कैसे होती है, बढ़ता कैसे है ये लता, भक्ति लता, उसको कल देखेंगे, ठीक है। और आगे चलते चलते ये भक्ति लता कहाँ तक पहुँचती है वो कल हम सुनेंगे, ठीक है। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
भक्ति लता बीज प्राप्त करने का,
बीज प्राप्त करना हृदय में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, वो लिखा नहीं है, वो कल क्योंकि हम कहीं और से सीधे आए, तैयारी करने के लिए भी हमें समय नहीं मिला था। तो ये श्लोक अवश्य आप सब कंठस्थ कीजिएगा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। ठीक है, तो बीज को प्राप्त करना, बीज का आरोपण करना, बीज की सिंचाई करना, ये तीन पहले कदम। ठीक है, और कोई प्रश्न? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, प्रश्न ये है कि ज्ञानियों के बारे में यहाँ पर कहा गया था, तो जो भक्ति में आकर ज्ञान अर्जन करने का प्रयत्न करता है जैसे प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर, तो क्या वो ज्ञान प्राप्त करना बाधक है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये भक्ति युक्त है, भक्ति से जुड़ा हुआ है। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृष्ण की सेवा को बढ़ाएगा, कृष्ण सेवा में हमारी निष्ठा को बढ़ाएगा। ये कृष्ण सेवा से, कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है, बल्कि कृष्ण भक्ति का ही एक अंग है, क्योंकि ये भी श्रवण है ना। हम जब ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कृष्ण तत्व क्या है, अभी चैतन्य महाप्रभु तो इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। कौन से चार विषय हैं जो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाए, कल चर्चा कर रहे थे ना? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, भागवत सिद्धांत। ठीक है, ये चार विषय, तो ये भी ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान अर्जन करना बुरी बात नहीं, लेकिन ज्ञानी ज्ञान मार्ग में जाना, मतलब इस पथ को महत्व देना कि भगवान को केवल ज्ञान से, अपने तर्क वितर्क से, अपने मानसिक बल से प्राप्त किया जाए, स्पेक्युलेशन। अंततः ये ज्ञान ही नहीं, केवल हमारे वैष्णव गुण जो है, हमारा श्रवण कीर्तन, हमारी सेवा भाव, ये भगवान को आकर्षित करेगा और वो हमें कृपा देकर कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ज्ञान तो आवश्यक है हमारे लिए। अगर हम कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व क्या है नहीं समझेंगे तो हमारी निष्ठा श्रद्धा बढ़े ही कैसे। इसलिए तो ये सब क्लास वगैरह है ज्ञान अर्जन करने के लिए। लेकिन कैसा ज्ञान, किस लिए हम ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि हम अच्छी तरह से सेवा कर सके भगवान कृष्ण की। लेकिन ज्ञान मार्ग में जो लोग हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? वो तो भगवान होना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो भक्ति से विरोधात्मक, अगर साधना के समय कोई सेवा आ जाए तो क्या करना चाहिए? साधना भी तो सेवा ही है, परंतु अगर उस समय कोई सेवा आ जाए तो क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। आप और क्या बोलते हैं? आप कोई मत जब करना चाहिए, और एक उत्तर है कि सेवा करना। आप प्रश्न समझे ना, आप जब कर रहे हैं सेवा, तो सेवा के लिए आपको बोला जा रहा है। तो उत्तर यह है कि सेवा कितना जरूरी है, उसका महत्व क्या है, और कौन हमें बोल रहा है सेवा करने के लिए, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। अवश्य हर भक्त को यह अनुभव होगा कि जब भक्त के लिए तो 24 घंटे सेवा ही सेवा है ना, तो एक सेवा करते समय कोई दूसरी सेवा आ जाती है, ये करें कि वो करें, कभी कभी 10 सेवाएं एक साथ में आ जाती हैं, कौन सा करें। और ये केवल हम सब के लिए परेशानी नहीं है, ये माता यशोदा के लिए भी हुआ था ना। माता यशोदा क्या कर रही थी, कृष्ण को दूध पिला रही थी, उधर दूध उबल रहा था चूल्हे के ऊपर और दूध उबल कर गिर रहा था। उस समय माता यशोदा ने क्या किया, साक्षात भगवान कृष्ण को अपने हाथों में उन्होंने ग्रहण की धारण किया हुआ था, कृष्ण को रखा और दूध के पास चली गई वहां पर। क्यों? अरे हम तो सेवा करते हैं कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। उन्होंने कृष्ण को त्याग कर दूध के पीछे गई हूं। क्यों? क्योंकि वो दूध भी कृष्ण के लिए था। तो अगर कृष्ण से दूर रहकर कृष्ण की सेवा और अच्छी तरह से हो सकती है तो वही सही, अगर वो उचित है तो। लेकिन क्या उचित है क्या उचित नहीं है, इसके लिए परिपक्व आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। इसलिए सुरक्षित मार्ग यही है कि हमारे से वरिष्ठ जो अधिकारी भक्त हैं उनके कहने के अनुसार हम कुछ भी करें। अगर जब के समय कोई अधिकारी भक्त आके हमें कहे कि ऐसा करो तो हमें कर लेना चाहिए, लेकिन अपने मनगढ़ंत ढंग से हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये आदत बन जाएगी कि जब के समय सब कुछ अन्य चीज करते रहे। प्रयास तो ये होना चाहिए कि जब के समय केवल जब, लेकिन ऐसी कोई अचानक अकस्मात कोई आवश्यक सेवा आ जाए तो फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। जैसे जब के समय कोई एक वैष्णव, सब इतने अतिथि वैष्णव आते हैं यहाँ हमारे पास वृंदावन में, कोई वैष्णव जा रहे हैं वृंदावन छोड़कर, उनके लिए कोई जाने की कोई व्यवस्था करनी है, अचानक समझ में आया कि उनको प्रसाद देना है, हम बोल नहीं हम जब करेंगे, उनको प्रसाद नहीं देंगे हम जब करेंगे, क्या ठीक है? आप जब करेंगे या उनकी सेवा करेंगे? उनकी सेवा करेंगे। लेकिन अगर कोई बोले अरे आओ तो सही, देखो हम थोड़ा वो बात करते हैं कि एक अगले महीने हमको कहाँ जाना है, तुमको वहाँ द्वारका जाना है या यहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे, ये बात अब करने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए देर बज गया, अब अगला क्लास भी शुरू होगा ना। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, गौ प्रेमानंदे। धन्यवाद। Ahem.